जी के ऊपर अगला प्रश्न इस प्रकार से है। छायावादी गीत काव्य की विशेषताओं को दृष्टि में रखते हुए निराला जी के काव्य की विशेषताएं बतलाइए। छायावादी कवियों में सबसे अधिक गीत निराला जी ने ही लिखे हैं। उन्होंने लगभग 400 गीत लिखे हैं, जिनमें से कुछ प्रकाशित और शेष उनके काव्य संग्रह में संकलित हैं। निराला जी के गीतों में कई महत्वपूर्ण बातें देखने को मिलती हैं। इनके काव्य में सबसे पहले बात तो संगीत के समावेश की है। कबीर, सूर, तुलसीदास और मीरा की भांति उनके गीत भी संगीत शास्त्र के आधार पर लिखे गए हैं। इनके गीत खड़ी बोली के हैं, जिनमें संत पदावली से भिन्न आज तक के मानस की मन स्थिति के अनुकूल भावनाओं को व्यक्त किया गया है। निराला जी के गीतों में दूसरी विशेषता संगीत तत्व की है। उनका शैशव बंगाल में बीता था, इसलिए उनके संगीत और साहित्य के संस्कारों का निर्माण बंगाल के वातावरण में होने से उनका दृष्टिकोण उदार बन गया। बंगाल के प्रसिद्ध नाट्यकार डीएल राय और विश्वकवि रविंद्र ठाकुर ने अपनी रचनाओं में संगीत का पुट दिया है। निराला जी ने उनके प्रभाव से खड़ी बोली के अपने इन गीतों में बंगला के माध्यम से इस तत्व को समाविष्ट किया है। तीसरी विशेषता उनके गीतों की यह है कि उन्होंने हिंदी संगीत को शब्दावली और गाने का ढंग दोनों में ही सुधार करने का प्रयत्न किया है। एक गीत का मूल पंक्ति इस प्रकार से है। जग का एक देखा तार, कंठ अगणित तेह सप्तक, मधुर स्वर झंकार। निराला जी के गीतों में संगीत के समावेश के तो पक्षपाती हैं, किंतु वे यह नहीं चाहते कि प्रांत विशेष या गायकी के घरास विशेष की भांति कोरी अदायगी पर ही जोर दिया जाए। निराला जी के गीतों की चौथी विशेषता यह है कि उसमें उच्च स्तरीय साहित्यिक सौंदर्य मिलता है। शास्त्रीय संगीत के साथ साहित्यिक छटा का भी संगम हो, ऐसे गीत आधुनिक कवियों में उन्हीं के हैं। उनमें उच्च कोटि की दार्शनिकता भी है और गंभीर रहस्यानुभूति भी। उनके प्राकृतिक सुषमा के आकर्षक चित्र भी हैं और मानवीय सौंदर्य का सफल अंकन भी है। उनमें बलिदानी भावना का उफान भी है और सहज आत्मनिवेदन भी। निराला जी के गीतों की पांचवी विशेषता यह है कि उनमें एक तटस्थता का भाव है। वे निजी वेदना या उल्लास को लेकर नहीं चले हैं, वरन उनमें एक विशाल मानव समुदाय की भावनाओं को मुखरित होने का अवसर मिला है। निराला जी के गीतों की छठी विशेषता यह है कि वे लघु आकार के हैं। अधिकांश गीतों के तीन बंद हैं, वैसे दो और एक बंद के गीत भी उन्होंने बहुत लिखे हैं। इनके गीत में बिखराव नहीं आता, वरन कसावट आ जाती है और पाठक या श्रोता रसमग्न हो जाता है। निराला जी के गीतों की सातवीं विशेषता यह है कि उनकी भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत की तत्सम शब्दावली का भी उपयोग हुआ है। आगे चलकर जब इन्होंने उर्दू के गीतों गजलों के प्रयोग किए, तब अवश्य अरबी फारसी के शब्दों को ग्रहण किया, लेकिन फिर भी वे अरबी फारसी के प्रचलित शब्दों को ही लेकर चले हैं। साथ ही उनमें संस्कृत की शब्दावली का भी मिश्रण किया गया है। सबसे बड़ी बात यह रही कि उन्होंने कम से कम शब्दों में अधिक बात कहने का प्रयास किया है। गीतों के साथ निराला जी कविताओं की भी रचना की है। प्रगीत में भी गीत की भांति ही कवि के हृदय की कोमल भावनाओं का प्रकाशन होता है, लेकिन गीतों से इनमें एक अंतर है, वह यह कि उनमें शास्त्रीय संगीत के आधार पर गाए जाने और व्यक्तिकता के गहरे स्पर्श के स्थान पर वह तत्व और दृश्यांकन के साथ भाव चित्र को महत्व दिया गया है। प्रगीत के आधार पर भी गीतों में बड़े होते हैं और तुकांत और अतुकांत या मुक्तक छंद किसी में लिखे जा सकते हैं। गीतों की भांति इनमें संक्षिप्तता, कसावट या भाषा की समासिकता का वह रूप नहीं रहता जो शब्दों की मितव्यता की प्रवृत्ति को अपनाने से आता है। निराला जी की कुछ कविताएं जैसे संध्या सुंदरी, खंडहर, भिक्षुक, प्रेम आदि इसी के अंतर्गत आती हैं। अंग्रेजी में जिसे वेलरेडी कहा जाता है, उसे हिंदी में आख्यानक कहा जाता है। सामान्य जनमानस में उसे लोक विश्वासों के आधार पर जब कोई रचना प्रणीत होती है तो उसे आख्यान काव्य कहते हैं। निराला जी ने राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में इसी लोक गाथा की प्रणाली को अपनाया है और अत्यंत कुशलता से साहित्यिक रूप में प्रस्तुत करके सफल आख्यान काव्यों की सृष्टि की। जैसा कि इस साहित्य विधा के नाम से ही ध्वनिगत होता है कि गीति तत्व में नाट्य तत्व या नाट्य तत्व का गीति तत्व के मिश्रण से गीति नाट्य का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में कविता में अभिनयता से तत्व जब समाविष्ट हो जाते हैं तो गीति नाट्य का जन्म होता है। निराला जी ने पंचवटी प्रसंग नाम से एक गीति नाट्य का सृजन किया है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने इसी संदर्भ में लिखा है, निराला का यह गीति नाट्य बंगाल की रासलीलाओं की पद्धति पर रचा गया। उन रासलीलाओं में विभिन्न पात्र आते हैं और लंबे लंबे उद्गार व्यक्त करते हैं। लंबे उद्गारों के लिए गद्य उतना समीचीन माध्यम नहीं होता, इसलिए कथात्मक रूप दिया जाता है। निराला को मुक्त छंद की प्रेरणा रास की नाट्य प्रणाली से प्राप्त हुई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि निराला जी ने काव्य रूपों के विविध प्रयोगों किए हैं। गीत प्रगीत आख्यान काव्य और गीत नाट्य आदि से गीतों और प्रगीतों में से उनकी प्रयोगशील प्रवृत्ति ने उन्हें कितने ही नए रूपों को जन्म देने के लिए प्रेरणा दी है। उन्होंने जिन काव्य रूपों को लिया है उनको टकसाली बना दिया है। यह विशेषता उनके समकालीनों में केवल उन्हीं में पाई जाती है। निराला जी पर अगला प्रश्न इस तरह से है, निराला की रहस्य भावनाओं की विवेचना कीजिए, या निराला काव्य की मूल प्रेरक शक्ति उनकी आध्यात्मिक भावना रही है, इस कथन को ध्यान में रखते हुए निराला की रहस्य भावना की विवेचना कीजिए। उत्तर, निराला और रहस्यवाद की प्रेरणा। निराला की रहस्य अनुभूति की प्रेरणा के स्रोत प्रायः तीन माने जा सकते हैं। बंगाल का सुरम्य प्राकृतिक वातावरण, जिसकी गोद में निराला की बाल्यावस्था एवं युवावस्था व्यतीत हुई। रविन्द्रनाथ के साहित्य का प्रभाव तथा स्वामी विवेकानंद के प्रभाव, फलस्वरूप रामकृष्ण मिशन के साधुओं के साथ निराला का गहन संपर्क। निराला पर रामकृष्ण मिशन के स्वामी शारदानंद का गहरा प्रभाव था। निराला और रहस्यवाद। निराला के काव्य में पग पग रहस्यवाद की अभिव्यक्ति पाई जाती है। उनकी शायद ही कोई ऐसी कविता हो जिसमें रहस्यवाद की व्यंजना न पाई जाती हो। निराला के काव्य में विशेषकर अपरा में उपलब्ध रहस्यवाद का विश्लेषणात्मक अध्ययन निम्नलिखित प्रकार से है। निराला सदैव एक दार्शनिक की भांति सोचते रहते थे। उनकी चिंतन पद्धति प्राय अद्वैतवादी थी, परंतु एक अंतर के साथ, निराला का अद्वैतवाद शंकराचार्य की भांति गतिहीन न होकर विवेकानंद की भांति गतिशील अद्वैतवाद है। वह अपने जीवन के दुख को माया कहकर नहीं टाल देते हैं, वरन उसमें संघर्ष करते हैं तथा प्रभावपूर्ण पंक्तियों का निर्माण करते हैं। आत्मा परमात्मा का संबंध लेकर निराला तुम और मैं कविता में अद्वैतवाद का स्पष्ट प्रतिपादन करते हुए दिखाई देते हैं। तुम मृदु मानस के भाव और मैं मनोरंजनी भाषा, तुम नंदन वंदन विटप और मैं सुख शीतल तन शाखा, तुम प्राण और मैं काया, तुम युद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म, मैं मन मोहिनी माया। निराला का विश्वास है कि इस नाम रूपात्मक जगत का संचालन करने वाली कोई अदृश्य अज्ञात एवं चेतन सत्ता आवश्यक है। उसे ही संबोधित करते हुए वह ब्रह्मा के प्रति अपने अटूट विश्वास को व्यक्त करते हैं। एक दिन थम जाएगा रुदन, तुम्हारे प्रेम अंचल में लिपट स्मृति बन जाएंगे कुछ कण कण सिंचे नयन जल में। ब्रह्म और जी के तादम्य तक निराला ने 300 पानों का वर्णन किया है। ब्रह्म की ओर झुकान, ब्रह्म के प्रति आत्मसमर्पण, एकाकार हो जाना, जहाँ द्वैत भावना समाप्त हो जाती है और कबीर की तरह कभी आत्मा की लाल की लाली से लाल होकर स्वयं भी लाल बन जाती है, कवि निराला स्वयं को ब्रह्म मान लेते हैं। वहाँ कहाँ कोई अपना सब, सत्य नीलिमा में लयमान, केवल मैं केवल मैं केवल मैं केवल मैं ज्ञान। फिर भी निराला का रहस्यवाद कबीर से भिन्न है। कबीर का दर्शन वैराग्य प्रधान है, निराला दार्शनिक है परंतु वैरागी नहीं। दाम्पत्य भाव की व्यंजना। इन्होंने एक दो स्थानों पर स्वामी विवेकानंद की भांति अपने आराध्य को नारी रूप में संबोधित किया है। प्रिय कोमल पदगामनी, मंद उतर जीवन मृत, तरुतृण गुलमों की पृथ्वी पर। विवेकानंद की भांति निराला जीव और ब्रह्म के मध्य माया के आवरण को स्वीकार करते हैं। भक्ति भावना की अभिव्यक्ति। निराला के अद्वैतवाद में भक्त की भावना का सम्मिश्रण पाया जाता है। पंचवटी प्रसंग की ये पंक्तियां दृष्टव्य हैं। मुनियों में मनुष्यों के मन की गति सोच ली थी पहले ही, इसलिए द्वैत भाव भावकों में भक्ति भावना करो। कई स्थानों पर निराला की उस अदृश्य सत्ता के प्रति प्रेम और विश्वास की भावना मुखर दिखाई देती है। यह अभिव्यक्ति एकदम वैष्णव भावना के साथ मेल खाती है। भर देते हो बार बार प्रिय करुणा की किरणों से क्षुब्ध हृदय को पुलकित कर देते हो। इस प्रकार के स्थलों पर निराला में एक वैष्णव कवि की सी तन्मयता मिलती है। कबीर में जिस वैष्णवीय प्रेम भक्ति का वर्णन मिलता है वह हमको निराला में दिखाई देता है। निराला ने उस अनंत शक्ति को श्यामा माता जननी कहकर पुकारा है। यह आत्मनिवेदन का ही एक रूप है और रहस्यवाद के अंतर्गत आता है। निराला की कविताओं में जिज्ञासा की स्थिति प्रायः मिल जाती है, जिसमें ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा भी रहती है तथा उसमें उत्पन्न कौतूहल विस्मय एवं आनंद की व्यंजना भी। निराला में या तो अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा प्रधान चिंतन मिलता है अथवा अत्यधिक स्थिति में अनुभवों का अंकन किया गया। निराला के मन में चेतन के प्रति अटूट विश्वास उठता है, तब उसे चेतना में लय हो जाने के लिए आत्मा विकल उठती है। बस उसको समस्त विश्व में एक ही चेतना के दर्शन होने लगते हैं। प्राण धन को स्मरण करते नयन झरते नयन झरते। मिलन की स्थिति रहस्यवाद में विरह और मिलन की अवस्थाएं साथ साथ चलती हैं। साधक के मन में कभी तो विरह जन्य विकलता अंकुरित होती है और कभी किन्हीं विरल मधुमय क्षणों में उस चेतना का मधुर संस्पर्श प्राप्त होता है। प्रिय तो सदैव हृदय में स्थित रहता है, फिर उसे कहाँ और क्यों खोजा जाए। कवि निराला प्रकृति के कण कण में उसी सत्ता की छवि का दर्शन करते हैं। वह छायावादी कवियों के समान प्रकृति के रूप में अरूप का आभास पाते हैं। किस अनंत का नीला अंचल हिला हिला कर आती हो तुम सजी मडला कर। अन्य छायावादी कवियों की भांति निराला ने प्रकृति के प्रत्येक वस्तु को विस्मय और जिज्ञासा के भाव से देखा है, जिसे कौन क्या आदि शब्दों द्वारा प्रकट किया गया है। इस पद्धति से सामान्य वस्तु में भी एक प्रकार का साधारण सौंदर्य आ गया है। निराला ने खुले हुए पुष्पों को गरजते हुए बादलों को पर्वत के उत्सुक श्रृंगों को बल खाती हुई। यह ठीक है कि निराला की रहस्यानुभूति में केवल कवि की अनुभूतियां नहीं एक दार्शनिक का गूढ़ चिंतन भी है, इसलिए इनका दर्शन सरस भी है और नीरस भी है। निराला के रहस्यवाद में चिंतन की प्रधानता है। निराला के रहस्यवाद में जिज्ञासा एवं मिलन की स्थितियों का वर्णन अधिक है, विरह की स्थिति का वर्णन अपेक्षाकृत कम है। पद्धति की दृष्टि से रहस्यवाद में वेदांतवादी धारा को मुखरित किया गया है। निराला जिस अनंत प्रकाश के कवि हैं, जिस अपरिमेय अव्यक्त सत्ता के प्रति उन्होंने आत्मविसर्जन किया है, वह विभिन्न स्वरों में अभिव्यक्त हुआ है। बौद्धिकता के प्राधान्य के कारण कहीं कहीं इनकी कविताएं कविता न रहकर केवल दर्शन का प्रतिपादन करने वाली नीरस पंक्तियां बनकर रह जाती हैं। चिंतनशील होते हुए भी निराला नीरस नहीं है। सहृदयता पूर्ण अनुभूति के संयोग के कारण इनकी रहस्यानुभूति प्राय सरल और रमणीय है। शांति प्रिय द्विवेदी के शब्दों में निराला जी की आध्यात्मिक पंक्तियों तथा उनकी कविताओं में जहाँ जहाँ इस प्रकार का अनुभूति दर्शन मिलता है, वहाँ वहाँ हृदय का संगीत है। इसी के साथ निराला के ऊपर आलोचनात्मक प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं।